الحمد لله وسلام على عباده الذين استقى ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المال والبنون زينة الحياة الدنيا وقال الله تعالى في المقام الآخر والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. جب بھی کسی گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ اس بچے کی پیدائش کو اپنی کاسٹ سمجھتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ بچہ پیدا ہوا ہے، کیونکہ وہ اس کا ذریعہ بنے ہوتے ہیں، لہذا خود بخود ان کے ذہن میں ایک احساس ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے تمام چیزوں کے ہم ذمہ دار ہیں، اور وہ اس وقت تک اپنے ذہن میں یہ بات سمجھتے رہتے ہیں کہ جب تک کہ اس بچے کی شادی نہیں ہو جاتی. جو ہی اس کی شادی ہوئی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے فرائض سے فارغ ہو گئے، اب وہ جو کچھ زندگی میں کرتے رہے فوری طور پر وہ بچے سے امید لگاتے ہیں کہ اب یہ بچہ ان ریٹرن ہمارے ساتھ بھی وہ تمام چیزیں کرے گا، اور یہ بچہ اپنی زندگی کو بھی چلائے گا، روزی بھی کمائے گا، اور معاشرے میں بھی ایک اچھا انسان بن کر رہے گا. یعنی انہوں نے جو زندگی بھر جو کچھ کیا ہوتا ہے سارا کا سارا اس وقت وہ اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ذہن میں یہ بات سوچی ہوئی ہوتی ہے پیدائش سے، لہذا وہ ساری زندگی جو محنت کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر شادی کے دن یا شادی کے فوراً بعد بچے سے ذرا بھی اونچ نیچ ہو جائے تو ماں باپ جو ریئیکشن کرتے ہیں وہ زیادہ سیویئر ہوتا ہے، بنسبت اس کے کہ جب اس کی شادی نہیں ہوتی وہ ماں باپ کے ساتھ بڑے لاڈ کرتا ہے، بڑے نخرے اٹھاتا ہے، ماں باپ اگنور کرتے رہتے ہیں کہ جی سنگل ہے، اب اس کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، یہ جو کچھ کرتا ہے چلو کوئی بات نہیں ہے. لیکن لمحے بھر کے اندر اندر اب ان کی سوچ بدل جاتی ہے، اس لیے ان کا ریئیکشن بدل جاتا ہے. تو اب ماں باپ کے اوپر صاف ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس بچے نے اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے پھر بعد میں چلانا ہوتا ہے. اس لیے آج جی میں آیا کہ بھئی ہم کچھ باتیں ماں باپ کے اس حوالے سے کرتے ہیں کہ ماں باپ کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور وہ اس کو کس طریقے سے نبھاتے ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی ماں باپ اس کے جسم کی پرورش شروع کر دیتے ہیں. بچے کو کھلانا پلانا، اس کو سردی گرمی سے بچانا، اگر یہ بچہ بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کروانا ماں باپ اپنا فرض سمجھتے ہیں، سارے ماں باپ کرتے ہیں اس کام کو. اسی طرح بچوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے ابیوز، اور وہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے فزیکل ابیوز اور دوسرا اس کا مینٹل ابیوز بھی ہوتا ہے، اور اس مینٹل ابیوز کو تو کہتے ہیں نگلیکٹ، اور فزیکل ابیوز ہم سارے جانتے ہی ہیں کہ اگر کوئی بندہ فزیکلی کسی کو ابیوز کر رہا ہوگا تو کیا ہوگا. ہمارے اس معاشرے میں عام طور پر فزیکل ابیوز اتنا زیادہ نہیں ہوتا، بہت کم ماں باپ ہوتے ہیں جو اتنے وائلنٹ ہو جائیں کہ بچے کو وہ ہارم کر دیں، نقصان پہنچا دیں. ہاں البتہ نگلیکٹ بہت عام ہوتا ہے، بچے کو नफ्सियाती तौर पर माँ बाप की जरूरत होती है, लेकिन माँ बाप यहाँ रोजी कमाने में इतने मसरूफ होते हैं कि उनके पास बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनने की और देखने का टाइम ही नहीं होता, लिहाजा ये बच्चों को निग्लेक्ट करते रहते हैं। तो इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए कि बच्चों को निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से बच्चों के अंदर जो उनकी साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स हैं वो क्रिएट हो जाते हैं, हत्ता के बच्चे ड्रग्स तक पहुंच जाते हैं। ये बात याद रखें कि हमने अपनी पसंद से ये इस माशरे में रहना चूज किया है, और इस माशरे में ये सारी बीमारियां जो मौजूद हैं ये हमारे घरों तक भी आ सकती हैं। ये बात नहीं है कि बस हमने तो एक हॉल सा बनाया हुआ है और ये कभी भी पेनिट्रेट नहीं होगा, लिहाजा इन बातों का तذکرہ करना कोई ऐब नहीं है, इनको समझना चाहिए और इस पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए कि हम इन बीमारियों से अपने बच्चों को किस तरह बचा सकते हैं, क्योंकि सेहतमंद जिस्म ही जिम्मेवारियों का बोझ उठा सकता है, कमजोर लागर सा आदमी क्या करेगा। लिहाजा अपने बच्चों की जिस्मानी तरबियत करना, उनको शुरू से वर्जिश वगैरह इन चीजों की आदि करना, ये भी हमारा ड्यूटी में शामिल है और इसका भी हमें ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद दूसरा एरिया जो ईमान की परवरिश है वो आ जाता है। कुछ वालदैन ये सोचते हैं कि जब हम फौत हो जाएंगे तो उसके बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, लिहाजा सारी जिंदगी वो इस काम में लगे रहते हैं कि माल इकट्ठा करते हैं, जायदाद बनाते हैं और बच्चों के लिए मकान और जमीन और जेवर और पता नहीं क्या क्या चीजें छोड़ जाने की तमन्ना करते हैं। लेकिन मेरे भाई ये बात तो सोचने वाली है कि जब हमारे बच्चे इस दुनिया से जाएंगे तो फिर उनका क्या होगा, यानी एक बात ये सोचना कि जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा, और दूसरा अंदाज ये भी है कि जब हमारे बच्चे इस दुनिया से जाएंगे तो उनका क्या होगा। तो लिहाजा उनकी ईमान की परवरिश करना ये भी हमारी ड्यूटीज में शामिल है। साइंस इस बात को साबित करती है कि मां के पेट में जो बच्चा होता है इसके ऊपर हालात मुतासर होते हैं। मां अगर खुश होगी तो बच्चा भी अंदर खुश रहेगा, यानी उसकी साइकोलॉजी उसी वक्त से डिवेलप हो रही होती है। अगर मां बाप आपस में झगड़ रहे होंगे, एक दूसरे को बुरा भला कह रहे होंगे, और इन लाज तो खैर लड़ने के लिए होते ही होते हैं, लिहाजा मियां बीवी को बड़ा अच्छा चांस होता है कि इन लाज को ही मौका बना के लड़ते रहो, तुम्हारी अम्मी ने यह कह दिया, तुम्हारे अब्बू ने फला कह दिया, भाई तुम्हारी अम्मी के अम्मी है तो भाई क्या हो गया, तुम्हारी भी तो मां है, इसमें कौन सी तकलीफ वाली बात है कि तुम उसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। तो आपस में एक दूसरे के मां बाप को अगर हम अपना मां बाप समझ लें, शरीयत के मुताबिक इंसान के मां बाप पहले अगर होते हैं तो फिर इन लॉज लीगली, अब ये कौन सा लॉ है, ये कोई लॉ ऑफ गवर्न तो नहीं है यहां का, भाई ये भी अल्लाह का लॉ है कि शरीयत मुहम्मदी के मुताबिक हमने निकाह पढ़ा है तो अल्लाह का कानून है, उसके मुताबिक ये अब तुम्हारे मां बाप भी हैं तो तुम उसको कबूल कर लो। कितनी देर लगती है इसको कबूल करने में, सोच की बात ही तो होती है। अब अगर तुम्हारी अम्मी लड़ती है तो क्या हो गया, तुम्हारी सास लड़ती है तो क्या हो गया, दोनों बराबर ही हैं। अगर सोच इस तरह से हो जाएगी कि मेरी अम्मी भी डांट देती थी, मेरी सास भी डांट देती है, तो कोई बात ही नहीं है। इसी तरह बाकी रिश्तेदार होते हैं, तो अगर हम यूं सोच लेंगे तो फिर लड़ने झगड़ने की बात ही नहीं रहेगी। वरना अक्सर देखा इधर से बच्चे भी हो रहे होते हैं और मियां बीवी लड़ भी रहे होते हैं, और इस लड़ने का इफेक्ट बच्चे के अंदर हो रहा होता है। साइंस इस बात को साबित करती है। अच्छा, इसी तरह हम जो कुछ खा पी रहे होते हैं बहुत साफ जाहिर है उसी से हमारे बच्चे के जिस्म आजा बन रहे होते हैं, ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं। भाई आंख बननी है, उसके जबान बननी है, उसके हाथ पांव बनने हैं, किस चीज से बन रहे हैं वो सारे माँ के पेट में, वही जो वो खा रही है। अगर वो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाएगी, अल्हम्दुलिल्लाह कहेगी, हलाल और तैयब जो है जबिया खाएगी, तो अंदर बच्चा बनने वाला भी हलाल जो है इनग्रीडियंट से बन रहा होगा। तो ये जब बच्चा बड़ा होगा खुद बहुत इसमें से आमाल निकलेंगे। तो बच्चे की साइकी जो है वो अंदर ही डेवलप हो रही होती है। और इसकी एक दलील आपको मैं यूं देता हूं कि जो ही ये बच्चा पैदा होता है तो शरीयत का हुक्म है कि भाई आप इसके कान में अकामत कहें और अजान दे दूसरे कान में। क्या यह बच्चे को समझ में आ रही होती है क्यों ये अजाने और अकामत दिलाए जा रहे होते हैं उसके कान में? तो साफ जाहिर है कि उसकी साइकी पे कोई ना कोई इफेक्ट हो रहा होता है, इसलिए शरीयत इन कामों को करने का हुक्म देती है। और उसके बाद जब मां उसको लोरिया देती है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती है, और उसके बाद जो है अल्लाह अल्लाह कहते कहते इस बच्चे को वो रेज कर रहे होते हैं, तो इसका इफेक्ट भी बच्चे के ऊपर पड़ रहा होता है। और फरमाया कि जो बच्चा सबसे पहले अल्लाह कहता है, अपनी जबान से जो अल्फाज बच्चे बोलते हैं शुरू शुरू में, अगर वो अल्लाह का लफ्ज बोलता है तो मां बाप के पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। वजह क्या होती है कि मां बाप ने इतनी दफा अल्लाह अल्लाह उस बच्चे के सामने कहा होता है कि अब बच्चे को तौहीद का वो लेसन मिल चुका होता है उस वक्त जब उसने अभी बोलना नहीं शुरू किया। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी अपना प्यारा नाम इतना प्यारा रखा है कि उसके अंदर तमाम जो हरूफ है वो फतहैन है, यानी उनके ऊपर फतह है, जबर है, क्योंकि अरबी के लुगत के अंदर जबर वाले अल्फाज को बोलना बनिस्बत जेर और पेश वाले अल्फाज के आसान होता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर हुक्म दिया कि नाम अल्लाह का सिखाओ तो बच्चे के लिए भी ये सबसे आसान तरीन नाम है, क्योंकि इस लफ्ज को अगर आप देखें सारे के ऊपर अलिफ के ऊपर जबर, लाम के ऊपर जबर, हा के ऊपर जबर, हर चीज के ऊपर अल्लाह, सारे जबर वाला ये लफ्ज है। लिहाजा बच्चा बड़े आराम से अल्लाह मुंह से बोल देता है अगर आप उसको शुरू से अल्लाह 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 सिखाते चले जाएंगे। बच्चे की उम्र के मुताबिक उसको इस्लामी अकायद सिखाने चाहिए। अक्सर मां बाप इस बात से धोखा खाते हैं, वो ये समझते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर उसके बाद ये सीख जाएंगे। नहीं, तौहीद का सबक, रिसालत का सबक, मां बाद मौत का सबक बच्चे को पैदाइश से ही सिखाना शुरू कर देना चाहिए। खाना रखे, बताएं कि ये किसने दिया, अल्लाह ने दिया। अबू मेहनत करते हैं, पैसे लाते हैं, कैसे आते हैं, अल्लाह रिस्क देता है। बच्चे के दिमाग में डाल दें कि अल्लाह हमें पालते हैं, अल्लाह हमें कायम रखते हैं, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी है, अल्लाह ने मौत देनी है, अल्लाह ने फिर हमें उठाना है। कुरान मजीद पढ़ते चले जाएं तो ये तीन मजामीन मुसलसल आपको नजर आएंगे कि तौहीद का सबक अल्लाह रब्बुल इज्जत बार बार देते चले जाते हैं, बार बार सिखाते चले जाते हैं। तो लिहाजा मां बाप को इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि बच्चा बालिग होगा तो फिर इसको तौहीद पढ़ाएंगे। बच्चे के जहन में तौहीद का, रिसालत का, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का ये सबक बचपन से ही पढ़ाना चाहिए। मौत की बात करते हुए तो बड़े भी डरते हैं, है जी, तो बच्चों के सामने कैसे करेंगे? भाई ना खुद डरो ना बच्चों को डराओ, मौत एक नेमत है, तोहफा है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। अगर हम अल्लाह की लिखा चाहते हैं, अल्लाह से मुलाकात चाहते हैं, तो हमें मौत को शरबत बनाकर पीना चाहिए, ये एक नेमत है। अगर हमें मौत नहीं आएगी तो जन्नत कहां से मिलेगी? اور جنت میں اللہ رب العزت کا دیدار کیسے ہوگا؟ موت تو انعام ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے، لہذا اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک اور زندگی ہے، لہذا اس زندگی کی تیاری کرنی چاہیے۔ بلکہ ابھی پروگرام سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے بھائی سے بات ہو رہی تھی، تو اس عاجز نے اس کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کی کہ بھائی دیکھو، اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ زندگی ہے اور اس کے بعد موت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اور مرنے والا جو ہی مر جاتا ہے تو موت کے وقت ہی فرشتہ اس کے پاس آتا ہے، بات چیت شروع ہو جاتی ہے، پھر جو ہی وہ فوت ہو جاتا ہے وہ عزیز و اقارب کی آواز کو سن رہا ہوتا ہے، جب اس کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہوتا ہے اس وقت وہ سن رہا ہوتا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، اس وقت وہ سمجھ رہا ہے، قبر میں لٹا دیا، اس کے بعد کھڑے ہوئے دعائیں مانگ رہے ہیں، یا اس کے ارد گرد جو چلنے کی آواز ہوتی ہے وہ بھی مرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے، تو تم کہاں سے اس کو مردہ کہو گے؟ اور ایک تو زندگی ایک مسلسل ہی تو چل رہی ہے، بس زندگی کا ایک انداز ہی تو بدلا ہے، یہ تھوڑا سا وقت ہمیں ملا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے ہیں، بعد میں اگر ہم جنت میں بھی چلے گئے تب بھی ہم نمازیں نہیں پڑھ سکیں گے، ہم روزے نہیں رکھ سکیں گے، ہم اس طرح سے دین کی محنت کی مشقت نہیں اٹھا سکیں گے، تو اس کا موقع تو ابھی ملا ہوا ہے، یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی میں یہ تھوڑے سے لمحات ملے ہوئے ہیں کہ ہم بھی اپنے پروردگار کی نعمتوں کے شکر گزاری کر لیں، اللہ تعالیٰ نے تو اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے، اور آگے جنت بنائی ہوئی ہے اور جنت میں جا کے مزے ہی مزے کرنے ہیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، اس میں چند لمحے کی مہلت دے دی ہے کہ تم بھی اپنے پروردگار کے گیت گا لو، تم بھی اپنے پروردگار کے سامنے سجدے ریز کر لو، تم بھی عبادت کر لو، چانس ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو بچوں کو ان باتوں کی اہمیت بتانی چاہیے، حلال اور حرام سکھانا چاہیے کہ حلال کسے کہتے ہیں، اگر آسان سے اس کی تعریف کی جائے، حلال کہتے ہیں ان تمام کاموں کو جس کا کرنے کا حکم دیا گیا، سب حلال، کرنے والے کام حلال اور نہ کرنے والے کام حرام، تو جو کرنے والے کام ہیں ان کو کرتے جاؤ، اور جن سے منع کر دیا ان سے رک جاؤ۔ آدم علیہ السلام ابا ہوا جنت میں رہتے تھے، اللہ رب العزت نے منع کر دیا شجر ممنونہ سے کہ اس کے قریب مت جانا، تو وہاں سے غلطی ہو گئی، جو بھی آپ اس کو کہہ دیں الفاظ، آزمائش تھی، ٹھیک ہے آ گئے اس دنیا میں، اور اس یہاں سے جو غلطی کرے گا تو وہ کہاں جائے گا؟ اگر پھر غلطی کریں گے تو وہ پروردگار نے اگلا سٹیپ جہنم کا بنایا، جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا، اور دنیا سے نکال کر اگلا سٹیپ جہنم کا ہے، لہذا کسی غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت کا جو حکم ہے ان کو ماننا چاہیے، اس پہ عمل کرنا چاہیے، بچوں کو شروع سے ہی نماز کا عادی بنانا چاہیے، بچہ پیدائشی طور پر فطرت اسلام پر ہوتا ہے، کیا مطلب فطرت اسلام، یعنی نیچرل جو ایک انسان کی جو ریئل ایک اس کی سٹائل ہے اس پہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا ماحول اس کو جو ہے انکار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، ورنہ اندر سے ہر بندہ جو ہے اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، اور اللہ نے جو احکامات بھیجے ہیں الدین النصیحہ، کہ تمام خیریں جو ہے وہ نصیحت جتنی بھی ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی، وہ سب کی سب خیر ہے اور یہی دین ہے، اور اگر اس کو دوسرے انداز سے کہا جائے کہ جتنا دین ہے سارا کا سارا خیر ہے، تو یہ فطرت اسلام ہے جس پر بچہ کو پیدا کیا گیا، یعنی ہر اچھی بات بچہ کرنے کے لیے تیار ہے، ماں باپ ہیں جس طرح اس کو بناتے چلے جائیں بنتا چلا جائے گا بچہ، تو لہذا یہ بچوں کو بنانا ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تین چیزوں پر اللہ والے بتاتے ہیں کہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، एक तो बच्चा अगर नमाज में सुस्ती कर रहा हो तो कंप्रोमाइज ना करें, यह ना सोचे कि मेरे बच्चे के इम्तिहान है, मेरा बच्चा थका हुआ है, मेरा बच्चा जो है वो सो रहा है लिहाजा नमाज नहीं पढ़ता, चलो कोई बात नहीं इसको जरा ढील दे दें। इस पर ढील नहीं है। आपको अगर उस बच्चे के पांव दबा के उठाना पड़े तो उस बच्चे को पांव दबा के उठाएं, बच्चा नमाज पढ़ ले। नमाज को अदा करना पड़ता है, फरमाया नमाज अदा करो। अदा के मुकाबले में क्या चीज है? कजा है, या अदा होगी या कजा होगी। तो अदा क्या होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चीज को मांगा कि यह चीज मुझे तुमने देनी है, तो या तो उसी तरह दे दोगे या उसमें नुक्स डाल के दोगे तो वो तो हो जाएगी कसर कासर, इसमें आपने नुक्स डाल दिया, जैसी नमाज पढ़नी चाहिए थी वैसी पढ़ी नहीं है, तो ये भी डिफेक्टेड हो गई थोड़ी सी, लेकिन चलो अदा हो गई। और एक है कि जो आपने मांगा था पानी, कि जी पानी पिला दें, और बेटा जो है खेल में लग गया और आप प्यास में बैठे हुए हैं, घंटे के बाद उसको याद आया ये भागा भागा गिलास पानी का ले आया, अब्बू ये पानी पी लें, अब्बू की मर्जी पानी पी लें, या नाराज हो जाए उससे। हम समझते हमने कजा पढ़कर अदा कर दी है, अदा नहीं हुई है, ये कजा है, लिहाजा इसमें नुक्स है। और न पढ़ना तो खैर फिर जुर्म है, जिस परवरदिगार ने सारी कायनात को बनाया, हमें वजूद दिया, उसका हुक्म है और उसके हुक्म की नाफरमानी हो रही है, और हम कह रहे हैं बच्चे को नींद आ रही है, तो नमाज पे कंप्रोमाइज नहीं करना। और दूसरी चीज ये है कि बच्चे को अगर आप देखें कि झूठ बोलता है तो उस पर कंप्रोमाइज नहीं करना, झूठ ना बोलने दें। जो बंदा आपके साथ झूठ बोलने का आदि हो गया, लोगों के साथ झूठ बोलने का आदि हो गया, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ भी झूठ बोलेगा, शरीयत के मामले में भी ये फिर झूठ करेगा, इसकी जिंदगी झूठी जिंदगी बन जाएगी। अगर इसको सच या आदि कर देंगे तो ये अल्लाह रब्बुल इज्जत से भी डरेगा कि एक हशर का दिन होगा, मैं वहां पेश होऊंगा, अल्लाह मुझसे पूछेंगे मैं कैसे जवाब दूंगा, तो ये खौफ उसको हो और सच का वो आदि बन जाए। तीसरी चीज, बच्चों से खिदमत कबूल किया करें। कई मां बाप होते हैं वो बच्चों से खिदमत ही कबूल नहीं करते, बच्चे खिदमत करना चाहते हैं, मां बाप तकल्लुफ करते रहते हैं, अरे नहीं मेरा बच्चा कोई बात नहीं आप रहने दो। जब आप उनको खिदमत करने का मौका नहीं देंगे तो बच्चों में आजी और इंकसारी कैसे पैदा करेंगे आप, बच्चे के अंदर झुकना कैसे आएगा? जिस बंदे में आजी इंकसारी होगी, नमाज की पाबंदी होगी, झूठ से वो बचेगा, इंशाल्लाह ये बच्चा बड़ा होकर इसमें वो औसाफ पैदा हो जाएंगे कि ये बलिए कामिल बन सकता है। ये की पॉइंट्स हैं, अगर हम बच्चों को सिखा देंगे तो हमारे बच्चों के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाएगी। अगली चीज जो बच्चों को सिखाने वाली है, जो मां बाप को चाहिए, वो उनके अखलाक की परवरिश है, कि उनके अखलाक को अच्छा बनाया जाए। सारी दुनिया इस बात को मानती है कि अच्छा अखलाक सिविलाइजेशन की शर्त है। जिस कौम को हम कहेंगे कि ये सिविलाइज कौम है, महजब है, जैसे हमारे अल्फाज में उर्दू में कहा जाता है, तो उसके अखलाक से वो पहचाने जाते हैं। उनके उठने बैठने के, चलने फिरने के तौर अतवार होते हैं, एक अंदाज होता है मामलात को करने का। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाद लोग जो है वो जब आते हैं तो बाज कौमों की तहजीब को देखकर बड़े मुतासर हो जाते हैं और कहते हैं जी देखें इस कौम के अंदर कितने तौर अतवार हैं, कितने अंदाज हैं, और वो समझते हैं कि ये महजब है। और बल्कि अफसोस उन लोगों पर जो अपने आप को कहते हैं हम कितने गैर महजब हैं, भाई जी कहते हैं हमारी कौम कितनी गैर महजब है, असल में शीशा देखकर कह रहे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारी कौम तो भाई वो कौम है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو خلق العظیم تھے، بہترین اخلاق تھا ان کے پاس، وہ اخلاق انہوں نے پیش کیا، ساری دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، وہ پورے پورے جو ہے زمانے یعنی کہ دنیا کے وہ رہبر بن گئے اور ان کو سکھانے اور سمجھانے والے بن گئے۔ صحابہ کرام کہیں بھی چلے گئے، لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہوئے اور دین اسلام کو قبول کرتے چلے گئے۔ آج ہم کتنے مسلمان اس ملک میں آئے ہوئے ہیں، ذرا ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم چلتے ہوئے کتنے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، تو پھر اپنے آپ کو تانا دینا چاہیے، نہ کہ مسلمانوں کو تانا دینا چاہیے، کہنا چاہیے کہ ہاں میرا اخلاق اتنا گندا ہو گیا ہے، ایسی بات یہ ہے تو ہم کہیں گے جی ٹھیک کہہ رہے آپ۔ یہ کیوں کہتے ہیں او جی مسلمان ایسے ہو گئے، مسلمان کا نام لگا کے کیوں کہتے ہو؟ مسلمان کا اخلاق بہترین اخلاق ہوتا ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، لہٰذا اس کے اندر بہترین اخلاق ہوتا ہے۔ ہاں مجھ میں کمی بیشی ضرور ہو سکتی ہے، میں انسان ہوں، مجھ سے ضرور غلطیاں ہیں، اپنے بارے میں یوں ضرور کہنا چاہیے۔ جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے، اس کی آنکھ بھی کنٹرول میں، اس کی کان بھی کنٹرول میں، اس کے ہاتھ پاؤں کنٹرول میں، سارے جسم کے عضو جو ہیں وہ کنٹرول میں ہوتے ہیں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ بھی سمجھ لیں، کیونکہ انسان سمجھتا ہے کہ بھائی آخر یہ مہذب قومیں تو بڑی اعلیٰ ہوتی ہیں، اور اس غلط فہمی کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ تو اس میں ایک بات سمجھیں کہ جو ہے انسان اپنے نفس کو دو طرح سے قابو میں لاتا ہے، ایک عقل سے اور دوسرا دل سے۔ عقل جو ہے اگر انسان پڑھا لکھا ہو تو کہتے ہیں پڑھا لکھا چور ہے، اور جو بندہ ان پڑھ ہو تو وہ سب کے سامنے ہی ایسی بیوقوفی کرتا ہے تو جاہل جو ہوتا ہے وہ حرکت جو ایسی کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو پڑھے لکھے بندے ہوتے ہیں، یہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں، یہ عقل کے ساتھ اپنے نفس کو قابو میں کر لیتے ہیں، ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیسے بیہیو کرنا ہے۔ یہاں سمندر کے کناروں پہ لوگ سوئے ہوتے ہیں اور دوسرے شرفا بن کے پاس سے یوں گزر رہے ہوتے ہیں جیسے یا تو یہ مرد ہی نہیں ہے، نہ آنکھ ادھر جاتی ہے، نہ خیال ادھر جاتا ہے، نہ دل میں کوئی جذبات ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو کوئی مردانگی ان میں ہے ہی نہیں، جب ہی تو سارے لوگ یوں ہی برہنا پڑے ہوتے ہیں۔ اور اگر ان میں مردانگی ہے تو پھر آپ بتائیں کہ جو اس حال میں پڑے ہوئے ہیں تو ان کا دل ان کی طرف غالب کیوں نہیں متوجہ ہوتا؟ وجہ کیا ہے کہ عقل نے ان کو سمجھایا ہوا ہے کہ اس وقت اگر تو کچھ کرے گا تو تجھے پولیس پکڑ کے لے جائے گی اور تیرے ساتھ وہ حشر ہوگا کہ تو یاد رکھے گا، اور اگر کوئی ایسی جگہ دے دیں جہاں اس کو چانس ہو کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، کوئی مجھے نہیں پکڑ سکتا، پھر ہم کہیں کہ بھی اب ذرا بتاؤ کہ تم نے کتنا اپنے آپ کو قابو کیا، کتنے تم شریف زادے تھے، پھر ذرا شرافت کا نمونہ دکھاؤ نا بن کر۔ تو وہ بات کیا تھی؟ بات یہ ہے کہ اس نے عقل سے اپنے آپ کو قابو کیا ہوا ہے۔ مومن دل سے اپنے آپ کو قابو کرتا ہے، اس کے دل میں اللہ رب العزت کی اتنی محبت ہوتی ہے، ایسے جذبات ہوتے ہیں اس کے کہ چاہے محفل ہو چاہے تنہائی ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا رب مجھے دیکھنے والا ہے، اور اس کا نفس قابو میں رہتا ہے، پھر وہ ادھر ادھر آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کے سامنے آپ جو مرضی لا کے دکھا دیں، جتنے مرضی خوشبودار کھانے پکا کر آپ دے دیں اور کہیں کہ یہ حرام ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا ہی نہیں، اس کے اندر خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہوتی ہے کہ اس کا دل جو ہے وہ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ عام آپ نے دیکھا ہوگا لوگ کہتے ہیں آئی ول ڈو وٹ آئی لائک ٹو، وجہ کیا ہے کہ میرا دل جو چاہتا ہے میں وہ کروں گا، اور اگر دل یہ چاہنے لگ جائے کہ میں اللہ کروں، اللہ سے محبت کروں، اللہ کے دین کے اوپر عمل کروں، پھر نمازوں کا بھی مزہ، ہر چیز کا مزہ۔ تو لہٰذا اپنے نفس کو اگر قابو کرنا ہے تو دل پر محنت کرنی پڑے گی۔ ہمارے ماحول میں انفارچونیٹلی بہت ساری ڈسٹرکٹیو چیزیں ہیں، جیسے ٹی وی ہے، انٹر انٹو دی نیٹ ہے، हेल्पफोन है, तो इन चीजों से हमें अपने बच्चों को बचाना चाहिए। ये सीधा हेल्प में ले जाता है बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को टेलीफोन दे देते हैं और समझते हैं सिर्फ अम्मी अब्बू का फोन आएगा, उसमें हर किस्म के फोन आ सकते हैं। तो लिहाजा इन चीजों से हमें अपने बच्चों को महफूज करना चाहिए। आम मेडिकल के हिसाब से भी अगर हम देखें तो 2 घंटे से ज्यादा ये जितने भी ये इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं इनके इस्तेमाल से मना किया गया, मेडिकली भी मना किया गया। और ये बच्चे जो हैं ये बुरी बातों को और अच्छी बातों को बहुत तेजी से दूसरे बच्चों में ट्रांसफर करते हैं, इनके अंदर बहुत ज्यादा एबिलिटी होती है। ये मोहब्बत भी ट्रांसफर करते हैं और नफरत भी ट्रांसफर करते हैं। हम साल साल मिलते रहें तो हमारी दोस्ती नहीं बनती, ये एक मुलाकात में 1 घंटे के अंदर कहते हैं ये ही इज माय फ्रेंड, और ऐसे फ्रेंड बने होते हैं कि माशाल्लाह, और उस 1 घंटे के अंदर वो इतनी सारी अच्छी बुरी बातें ट्रांसफर कर चुके होते हैं कि जो हम इतने अरसे की दोस्ती में नहीं कर सकते। तो लिहाजा बच्चों के फ्रेंड्स के ऊपर भी नजर रखनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को किन लोगों से मिला जुला रहे हैं। इनको खुली छूट दे देंगे तो फिर बच्चे तो फिर हर चीज सीख के घर लेकर आएंगे, आपकी मेहनत को चंद लम्हे में बर्बाद कर दिया जाएगा। तो लिहाजा बच्चों के साथ भी दोस्ती की जाए और बच्चों के दोस्तों के साथ भी दोस्ती की जाए। अगर हम ये करेंगे तो हमारे में जनरेशन गैप फिर पैदा नहीं होगा, जो आजकल लोग महसूस करते हैं कि जिस जनरेशन गैप हो जाता है उससे हम बच सकते हैं। अगली जिम्मेवारी जो माँ बाप अपने बच्चों के मामले में अदा करते हैं उसमें उनकी तालीम और उनकी अकल की परवरिश है, बच्चों के अकल की भी नशोनुमा की जाती है, और अकल की नशोनुमा के लिए तालीम दिलाई जाती है। माँ बाप बच्चों को अकलमंद बनाने के लिए स्कूलों में भेजते हैं, हाई प्रोफेशनल एजुकेशन उनको दिलवाने की कोशिश करते हैं, हमारे बच्चे अच्छी एजुकेशन हासिल करें, और इसके ऊपर अपना माल खर्च करते हैं, सारा सारा दिन खुद भी मेहनत करते हैं और दूसरों से भी मेहनत करवाते हैं। वजह क्या होती है कि ये तालीम में कामयाब हो जाएं, दुआएं भी मांगते हैं, दुआएं मंगवाते भी हैं। तो ये बहरहाल इससे बच्चों की नशोनुमा होती है, शऊर पैदा होता है, किताबें पढ़ने से इंसान को समझ में आती है, जो चीजें बगैर पढ़े इंसान को समझ नहीं आ सकती पढ़ने से वो समझ में आ जाती है। और वैसे भी आम जो प्रोफेशनल एजुकेशन है ये फर्ज कफाया है, हर फील्ड में मुसलमानों को जो है उस प्रोफेशन को अडॉप्ट करना चाहिए और उसको हासिल करना चाहिए, जो अच्छे काम है जिससे हमारे माशरे को फायदा पहुंच सकता है उसके लिए मेहनत करनी चाहिए। लेकिन दीन का जो फर्ज है ये दीन की जो तालीम है ये तो फर्ज आयन है, यानी अगर आप किसी मस्जिद में जाए जुमे वाले दिन और आप जरा ये कहें कि जी मेरे पास कॉलेज की जो प्रोफेशनल हैं जितने भी मेजर्स हैं उनकी एक लिस्ट डॉक्टर साहब आप ले लें, अगर जुमा पढ़ाते हैं माशाल्लाह, तो आप किसी दिन ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि आप उनको कहें जी मैंने नाम लेता जाता हूं इन प्रोफेशंस का और बंदे हाथ खड़ा करें अगर कोई बंदा यहां मौजूद हो, तो कम और पेश आप देखेंगे कि हर आदमी जो है यानी कि उसमें से तकरीबन पूरी लिस्ट में से कोई ना कोई आदमी जो है ना हाथ खड़ा कर देगा, बहुत कम ही होगा कि कोई फील्ड रह गया हो, यानी एक मस्जिद के अंदर। और अगर शहर को देख लें तो फिर तो ये आजिज भी गारंटी से कह सकता है कि जनाब सभी वहां पर हर फील्ड में बंदे मौजूद हैं। लेकिन अगर आप किसी मस्जिद के अंदर एक तजर्बा करें और उन्हें कहें कि 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम जी, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, जरा हाथ खड़ा करें कि कितने बंदे हैं जिनको ये आते हैं, जो इसकी डिटेल्स हमें बता सकते हैं, समझा सकते हैं, जिनको कुछ ना कुछ पता है, तो शायद अल्लाह माशाल्लाह कोई होगा जो हाथ खड़ा करेगा। तो बेसिक फाइव पिलर्स ऑफ इस्लाम में ही आउट, तो बाकी डिटेल्स में कहां जाएंगे कि हम उन्हें कहें जी बैं और शराकत की मामलात आप बताएं कि ये जो बिजनेस ट्रेड होती है वो कैसे करनी चाहिए शरीयत के मुताबिक, उधर तो लोग बड़े नाराज भी शायद हो जाएं, फंस भी जाएं, वो तो पूछने भी नहीं देंगे शायद कि इतने मुश्किल सवाल ना पूछे जी। तो भाई ये दीन का इलम हासिल करना फर्ज आइन है और ये बच्चों को शुरू से सिखाना चाहिए। और वैसे मैं आपको बताऊं, अगर आप अपने बच्चों को यहां इस मुल्क में छोड़कर जाना चाहते हैं ना, तो सबको चाहिए कि अपने सारे बच्चों को आलम बना के छोड़ के जाए, वरना इतनी अट्रैक्शंस हैं, इतनी अट्रैक्शंस हैं कि जो आपके बच्चों को जो है खींच लेंगे। ये जो कहते हैं ना कि यहां पर मेल्टिंग पॉट है, तो समझ जाएं कि वो मेल्टिंग पॉट कहां होता है। ये जो स्कूल है ये ही पॉट है जिनमें आप चाहे जिस शक्ल का और जिस जबान का और जिस मजहब का डालेंगे इस पॉट के अंदर, ये उसके अंदर उसको तब्दील करके मेल्ट कर देते हैं और एक सेकुलरिस्टिक किस्म का जो है ना मॉडल बन जाता है, जिसको कुछ भी नहीं पता होता कि अल्लाह ताला भी कोई चीज होते हैं, नबी भी होता है, कोई कैद भी है, उनको किसी चीज का भी एहसास नहीं रहेगा। लिहाजा अगर आप मेल्टिंग पॉट में भेज रहे हैं तो फिर चाहिए कि आप उसके साथ साथ उसका तोड़ भी उनको बताएं। सांप है तो सांप का तोड़ भी होता है, हम नहीं कहते कि सब लोग यहां से भाग जाएं, रहो लेकिन अपने बच्चे को करने वाले काम और न करने वाले काम बता कर जाओ। देखें इंसान और जानवर इनके अंदर बच्चों की तरबियत के मामले में एक पॉइंट समझने की कोशिश करें, समझने वाली बात है। देखें आप जानवरों के बच्चों को देखेंगे कि वो पैदा होते हैं, कमोबेश थोड़ी ही देर के बाद उस बच्चे के अंदर फिजिकल इंडिपेंडेंस क्रिएट हो जाती है। यानी बच्चा पैदा हुआ, आप चलो चिड़िया के बच्चे को देख रहे हैं, थोड़े ही दिनों के बाद इसका बच्चा जो है ना वो हवा में उड़ रहा होता है, जहाज बना होता है। बकरी के बच्चे को देखें, पैदा हुआ और चंद यानी कि मिनटों में छलांगे मार रहा होता है, इधर दौड़ रहा है उधर दौड़ रहा है, घास खा रहा है और जनाब क्या बात है। थोड़ा अरसा और बच्चा डिपेंडेंट होता है मां पर कि उसने दूध पी लिया, बाप का तो खैर उसको याद ही नहीं होता कि अब्बू जान भी कोई है, किसी जानवर को पता होता है अब्बू जान की तरह आएंगे आज शाम को खाना लाएंगे, कुछ भी नहीं, मां तक बात हुई बात खत्म। और उसके बाद चंद ही दिनों के बाद ये बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है, अपनी जिंदगी खुद गुजारने लग जाता है और अपनी मां को भूल जाता है। अगर आप इसको मां से जुदा करने के बाद दोबारा लाए तो ये अपनी मां के करीब ही नहीं जाता। इसी तरह वो जो फितरी जज्बा जानवरों के अंदर होता है बच्चों के लिए, वो भी चंद दिनों के बाद खत्म हो जाता है। एक इंसान का बच्चा है जो इंतहाई कच्चा है, पैदा होता है पड़ा हुआ है, न खाने का न पीने का न साफ करने का न बोलने का कुछ भी नहीं इसके साथ मामला, अब ये पड़ा हुआ है, मां इसको लेके बैठी हुई है, बाप इसके लिए रोजी कमा रहा है, हत्ता के इस बच्चे को चलने के लिए साल लग जाता है, खुदा की पनाह, और बोलने के लिए दो साल लगते हैं कि ये कह सके कि अम्मी पानी दे दो दूध दे दो, दो साल का अरसा मां इसको लगी हुई है, काम कर रही है कर रही है, आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपने भी कभी सोचा ही होगा क्या कि भाई ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ताला ने जैसे जानवरों को बनाया वैसे इसको भी बना दिया जाता, इंसान को भी बना दिया जाए। लेकिन यहां एक नुक्ता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मां बाप के अंदर फितरी जज्बा रख दिया और बच्चों को जो है कानून के मुताबिक पाबंद कर दिया कि मां बाप की इज्जत करनी है, एहतराम करना है, उनके सामने उफ नहीं करना। वजह क्या थी? और साथ उसकी पैदाइश को इतना डिपेंडेंट बनाया ताकि मां बाप वो जो मेहनत करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर ईमानियात को पैदा करना चाहते हैं, बच्चे के अंदर जो है जो मुकल्लफ होने की शरायत है, जो उसने आखरत में हिसाब किताब देना है, उसकी तरबियत करनी है, इस सारे के सारे अमल को करने के लिए बच्चे को इतना बेबस बनाया और माँ बाप को उसके साथ अटैच किया ताकि ये साल हा साल माँ बाप इसके साथ लगे रहे और बचपन से इसकी तरबियत करते रहे करते रहे। क्योंकि जानवर का बच्चा मुकल्लफ ही नहीं, ये बच्चा मुकल्लफ है, ये शहजादा है जो पैदा हो गया है, इसको अब जो है तरबियत करनी है ताकि हशर के दिन जब ये जवाब देने वाला बने तो इसकी तरबियत हुई हुई हो और ये वहां जवाब देने के काबिल बन सके। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बच्चे को इतना कच्चा पैदा किया कि माँ बाप लगे रहो लगे रहो लगे रहो और इसके इसको जो है फीड करते रहो, समझाते रहो समझाते रहो, इसको तौहीद का सबक पढ़ाओ, रिसालत का सबक पढ़ाओ, इसको माँ बादल मौत बताओ कि इसको कुरान पढ़ाओ, इसको मस्जिद में लेकर जाओ, इसको जो है मदरसे में ले जाओ, इसको हाफिज बनाओ, इसको आलिम बनाओ, जो तुम चाहते हो अल्लाह ने तुम्हें अख्तियार दिया हुआ है, इतना डिपेंडेंट इसको बनाया हुआ है कि ये चुल ही नहीं सकता तुम्हारे से। फिर भी अगर तुम गफलत कर जाओगे, कोताही करोगे तो फिर तो जिम्मेवारी आ गई ना, तो भाई फिर कहेंगे कि पूछ कुछ होती है भाई, इतनी अल्लाह ने बांडिश बनाई थी तुमने उससे फायदा ही नहीं उठाया। अब हमने इतनी सारी बातें की, आप भी कहते होंगे भाई ये तो बड़ा अच्छा खासा काम है जो करने वाला है, तो ये तो काम समझ के करना चाहिए, इतनी बड़ी जिम्मेवारी है अल्लाह के हाँ इस बंदे ने मुकल्लफ होना है, वो अल्लाह ताला ने इसको मुकल्लफ बनाया, इसके ऊपर पाबंदियां लगाई हुई हैं, ये अपनी मर्जी से रह नहीं सकता, कर नहीं सकता कुछ, तो इसकी तरबियत करनी है, तो तरबियत करने वाले को तो बहुत सारी साइकोलॉजी जाननी चाहिए, फिर अगर वो नहीं जानता होगा तो कैसे तरबियत करेगा। जिन स्कूलों में आप थोड़ी सी देर के लिए बच्चे को भेजते हैं जो मेल्टिंग पॉट कहते हैं, तो वो भी तो आखिर कोई साइकोलॉजी यूज करते हैं ना, उन्होंने भी बड़े कलरफुल किताबें बनाई होती हैं, उन्होंने भी वहां पर बहुत सारे कलरफुल चार्ट लटकाए होते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर बनाई होती हैं, जिसकी वजह से आप दो दिन बच्चे को ना भेजें तो खुद ही शोर मचा देता है कि मैंने तो स्कूल जाना है। तो जब वो इतनी साइकोलॉजी यूज करते हैं तो माँ बाप को भी अगर यहां इस मुल्क में रहना है तो साइकेट्रिस्ट होना चाहिए ना, साइकोलॉजिस्ट होना चाहिए, फिर तभी बात बनेगी। तो लिहाजा आइए थोड़ी सी साइकोलॉजी की जो है ना इंफॉर्मेशन भी आपको दे देते हैं ताकि ये भी आसान हो जाए कि बच्चों के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। एक चीज होती है उसको कहते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस दो किस्म के होते हैं, एक होता है वांटेड स्टिमुलस और दूसरा होता है अनवांटेड स्टिमुलस। स्टिमुलस जो है बेसिकली रीइंफोर्सर को कहते हैं, जो बंदे को फोर्स करे किसी काम को करने के लिए। अब वांटेड स्टिमुलस बच्चों के लिए क्या है, मसलन आप उसको कैंडी देते हैं, प्रेजेंट देते हैं, गुडी बैग्स देते हैं, बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं, शाबाश देते हैं, ये सारे के सारे चीजें क्या हैं, बच्चा इसको लाइक करता है, वांटेड स्टिमुलस है कि मुझे अप्रिसिएशन भी चाहिए, मुझे गुडी बैग्स भी चाहिए, मुझे जो है तोहफे भी चाहिए, फलां भी चाहिए, ये भी चाहिए, अम्मी अबू जो है उनकी अटेंशन भी चाहिए। इस सारे के सारों को आप एक पोटली में बंद कर दें और ये सारे कहलाएंगे वांटेड स्टिमुलस, बच्चा इनको चाहता है। हर बच्चे की पूरी कोशिश होती है कि माँ बाप को किसी तरह मैं राजी कर दूं। दूसरा होता है अनवांटेड स्टिमुलस, बच्चा नहीं चाहता कि जो है माँ बाप नाराज हो जाए, अम्मी ने जरा गुस्से से देखा तो बस बच्ची कांपी, ओहो मुझे काम करना है, जी मैं अभी काम करती हूं। अगर माँ बाप उसको देखेंगे ही नहीं इस निगाहों से कि तुम गलत कर रहे हो तो बच्चा क्यों फिर ठीक होगा, बच्चा तो करता चला जाएगा जो उसका दिल करेगा। तो अनवांटेड स्टिमुलस जो है ये भी रीइंफोर्सर है, यह उसको फोर्स करता है कि तुम अच्छे काम करो। जिस तरह वांटेड स्टिमुलस चाहिए होता है, उसी तरह अनवांटेड स्टिमुलस भी बच्चों की तरबियत के लिए जरूरी होता है कि शुरू से उसको कुछ ना कुछ रोक टोक करनी चाहिए। लेकिन अगर इसी अनवांटेड स्टिमुलस को बढ़ा दिया जाए तो ये कहलाता है पनिशमेंट। पनिशमेंट के दो इफेक्ट होते हैं। अगर आप किसी बच्चे को पनिश करेंगे तो उसका इमीडिएट इफेक्ट होगा कि वो बच्चा जो काम कर रहा है उससे बाज आ जाएगा, वो नहीं करेगा, डर जाएगा कि जी वो अम्मी मारेगी, अब्बू मारेंगे, वो काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप रिपीटेडली पनिशमेंट करते रहेंगे तो साफ जाहिर है इंसान की बॉडी भी अडाप्ट करती रह जाती है। वो क्या होगा, एक दफा एक थप्पड़ बर्दाश्त करेगा, दूसरी दफा 10 थप्पड़ मारेंगे तो तब बाज आएगा, उससे अगली दफा फिर 100 मारने पड़ेंगे, और जब 100 मारेंगे तो आपके अपने हाथ भी थके हुए होंगे क्योंकि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे करें। तो लिहाजा पनिशमेंट को भी एक लिमिट में रखेंगे तो ये तो चलती रहेगी, यानी अनवांटेड स्टिमुलस को भी आपने लिमिटेड में रखना है तो इसका इफेक्ट होगा। अगर इसको अनलिमिटेड छोड़ेंगे, पनिशमेंट्स बार बार आप देंगे और हर बार देंगे, तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और इसी को कहते हैं एक्सटेंशन, कि आपने वो चीज दी उसको बार बार इतनी अच्छा। अब इसमें दोनों चीजें अनवांटेड और वांटेड दोनों स्टिमुलस जो है, अगर आप उसको एवरी टाइम देते हैं और बेदहा देते हैं तो फिर क्या होता है, उसका इफेक्ट खत्म हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जी ये पैसे वालों के बच्चे बिगड़े हुए बच्चे होते हैं, क्योंकि खाना पीना खूब मिला होता है, हर चीज उनको मिली होती है, उनको इतने प्रेजेंट्स मिले होते हैं कि अब जिंदगी की उनके अंदर और कोई तलब ही नहीं रही होती। तो बच्चों को एक हिसाब से रोक के देना पड़ता है कि इतना ना दे दें कि जी ये बच्चा जो है बिल्कुल ही बिगड़ जाए। तो लिहाजा एक स्केड्यूल बनाना पड़ेगा कि जिससे बच्चों की तरबियत की जा सकती है, और उस स्केड्यूल का नाम रखा गया इंटरमिटेंट वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। यानी क्या करें कि आप एक तो वेरिएबल रेशियो पर दें कि कभी ज्यादा दे दिया कभी कम दे दिया, एक डॉलर की भी अहमियत होनी चाहिए, फूल की भी अहमियत होनी चाहिए। जरूरी तो नहीं कि बीवी को हर दफा सोने का हार देंगे तो खुश होगी, कभी फूल से भी खुश हो जानी चाहिए। अगर आपने उसको सोने के हार पे आदि कर दिया तो फिर तो माशाल्लाह हज उम्र में भी जाएगी तो सोने का हार देना पड़ेगा। कई लोग होते हैं जी वो तवाफ कम करते हैं और सोने की दुकानों पर ज्यादा फेरे मारते हैं, वजह क्या होती है, आदि किया होता है उसको। तो भाई ध्यान से चलो, ऐसा भी ना हो जाए। लेकिन बाहर सऊदीया जाए तो जरूर सोने का हार लेके दे, बीवी अगर राजी ना हो जाए मुझसे कोई बात नहीं है, उन्होंने आखिर नेकी का काम भी तो किया। तो इसके साथ साथ इंटरमिटेंट भी होना चाहिए, यानी एक तो अमाउंट उसकी बड़ी कम करते रहा करें, कभी पनिशमेंट ज्यादा दे दी और कभी बस हल्का सा कह दिया, कभी इग्नोर भी कर दिया। यानी इसको आप इस तरीके से इसको वेरिएबल करते रहेंगे, और दूसरी तरफ जो है इंटरमिटेंट करेंगे कि कभी किया कभी ना किया, तो इससे बच्चे की जो है नशोनुमा होती चली जाएगी, और यही लर्निंग थ्योरीज के अंदर बेस्ट थ्योरी कही जाती है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु कू अन्फुसकुम व अहलिकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये हमारे ऊपर लाजम है कि हम अपनी भी हिफाजत करें, अपने बच्चों की भी हिफाजत करें, बच्चों की साइकी को डील करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार मिसालें ऐसी हैं कि जिसमें उन्होंने बच्चों की साइकी को डील किया है। एक मिसाल देते हैं और बात को समेटते हैं। एक मरतबा हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अजान दी, सहाबा कराम ने और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी, पास ही कुफार के बच्चे खेल कूद रहे थे और उनमें से एक बच्चा हजरत बिलाल हबशी की नकल करने लगा। हजरत बिलाल हबशी का अपना अंदाज होगा, खूबसूरत अंदाज, काश कि हमें भी मौका मिलता हम भी सुनते। बाहर किस्मत वालों ने सुना, तो उन्होंने अजान, बच्चे ने उस तरीके से नकल करके अजान दी। अल्लाह के नबी उस वक्त नमाज से निकल रहे हैं, साहबा भी साथ हैं, आपने बच्चे की ये आवाज सुन ली कि वो नकल कर रहा है और बाकी बच्चों को हंसा रहा है। आपने उसको बुलाया कि इधर। जब बच्चा करीब आया, आपने अपना दस्त शफकत उसके सर पे रखा और फरमाया कि अजान दो जैसे तुम दे रहे थे। बच्चा झिझकने लगा कि भाई अब अल्लाह के नबी के सामने मुसलमानों की नकल कैसे करूं। आपने थोड़ा उसको एनकरेज किया, बोलो शाबाश अभी तो कर रहे थे, हाँ तो अजान दो। बच्चे ने अजान देनी शुरू की, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह बड़ा है अल्लाह बड़ा है, काफिरों का बच्चा है। अल्लाह के नबी अब उससे ये गीत सुन रहे हैं जो वो नकल करते हुए पढ़ रहा था। अल्लाह के नबी ने कहा पढ़ मेरे सामने भी पढ़। बच्चे ने कहना शुरू किया अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बच्चे ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन दिल में ख्याल आया कि कहीं मां बाप सुन न लें मैं कौन सी अल्फाज बोल रहा हूं, कौन सी गवाही दे रहा हूं। लिहाजा बच्चा डरते हुए कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ताकि कोई और न सुन रहे, सिर्फ नबी का हुक्म मान लूं। लेकिन अल्लाह के नबी उसको फरमाते हैं नहीं नहीं, ऊंची आवाज से इसको कहो। तो बच्चा भी फिर जोर से कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अगली बारी आती है अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चा फिर डर जाता है सारा कुफार मेरा मुखालिफ हो जाएगा, मेरा दुश्मन बन जाएगा, मेरे मां बाप मुझसे नाराज हो जाएंगे, कैसे गवाही दे दूं, नबी सामने मौजूद है, काफरों से निकल जाऊंगा। लेकिन नबी का हुक्म है, नबी उसकी साइकी को डील कर रहा है। फरमाते हैं जरा ऊंची आवाज से दूसरी बार कह दो। बच्चे ने फिर ऊंची आवाज से कहा अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह के नबी बच्चे के सर से हाथ हटा लेते हैं, फरमाते हैं जाओ। लेकिन अब बच्चा कहां जाए, अब मेरे लिए और कोई जगह नहीं है, मैंने अशहद ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और अशहद अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह के सामने कहा, अल्लाह के नबी मुझे भी साथ लेते जाओ, मुझे काफिरों के हवाले ना करो, अब मैं मुसलमान हो चुका हूं, कलमा मेरे दिल के अंदर असर कर चुका है, लम्हे भर के अंदर काफिरों का बच्चा मुसलमान हो चुका है। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे की साखी को यूज किया था, वो हंस रहा था मजाक कर रहा था, अल्लाह के नबी ने पल भर में उसको दीन इस्लाम उसके दिल के अंदर दाखिल कर दिया। ये होती है साइकी। हमारे पास हमारा अपना बच्चा पैदा होता है, साला साल हमारे हमारी सोबत में रहता है, लेकिन यही बच्चा इसके अंदर ईमान ही नहीं आता, अल्लाह की पहचान ही नहीं होती इसको, नबी का ख्याल ही नहीं आता, सुन्नतों को हमारे सामने पामाल करता फिरता है और हम इत्मीनान से जिंदगी गुजारते चले जाते हैं। क्या सिर्फ इसके जिस्म को पालना ही हमारा काम था, या हमारे ऊपर और भी जिम्मेवारियां थी, हमें अपने बच्चों की तरबियत करनी है। फरमाया कि अपने बच्चों को और अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। खुद सोचे अगर हशर का मैदान होगा, फरिश्ते जो है ले जा रहे होंगे, उस वक्त फरमाया कि अगर किसी के बच्चे को जहन्नम में ले जाया जा रहा होगा तो बच्चा सिफारिश करेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत से कि अल्लाह मुझे इन्होंने कहा कि डॉक्टर बन, मैं डॉक्टर बन गया, मुझे इन्होंने कहा तो इंजीनियर बन, मैं इंजीनियर बना, अल्लाह इन्होंने कभी भी नहीं कहा कि मैं तेरा बंदा बन जाऊं, تیرا فرما بردار بن جاؤں، نیک اور پارسا بن جاؤں، کاش کہ یہ مجھے وہ بھی کہتے، آج میں جہنم کی آگ سے بچ جاتا۔ اے اللہ میں آپ سے اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ میرے ساتھ میرے ماں باپ کو بھی جہنم میں داخل کر دے۔ فرمایا اس وقت اللہ تعالیٰ اس بچے کی فرمائش پر ماں باپ جو نیک ہوں گے ان کو جہنم میں داخل کر دے، کہ انہوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا، وہ اکیلا جا کے مرے گا، وہ سوچے گا کہ آج میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے میرے ماں باپ کی وجہ سے ہوا، اگر یہ اس وقت مجھے سمجھاتے سکھاتے میں ان کو خوش کرتا، میں ٹھیک ہو جاتا، اچھا بن جاتا، میں بھی ان کے ساتھ جنت میں جانے والا بنتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان فرائض کو صحیح معنی میں انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔